الفرج الفرج.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل الفرج.
سورة الفاتحة برائحة الجنة
Amen.
नाम मिले। बासु जी अनुमान को जो देते परिवार में एक नाम तक बहुत अल्हाबाद है, बहुत अल्हाबाद है अनुमान के, मगर नाम ही कटा लिया खुदा ने अपने नाम से नुस्बत करके। मगर सैयदा कौन है कि अल्लाह ने इनको नौ नाम अदा किए। अच्छा वो कौन से नौ नाम है? फातिमा, जहरा, सिद्दीका, मुबारका, राजिया, मर्जिया, जकिया, मुहद्दिसा। ये वो नाम नहीं मिले जो अल्लाह ने अपनी बारगाह से अदा किया। और हर हर नाम के लिए इतनी रिवायात, ऐसा नहीं है कि बीबी की एक सिफत के बारे में अल्लाह ने एक नाम दे दिया, नहीं, एक एक नाम के लिए आप किताबें उठा के देखिए, रिवायतें भरी पड़ी हैं। मैं फकत एक नाम का हवाला दूंगी और उससे मुताबिक दो चीजें आपके सामने पेश करूंगी। बीबी का नाम फातिमा। फातिमा क्यों है? रसूल अल्लाह की मर्तबत अहमद मुस्तफा जुदा करने वाली एक अलग हैसियत हो। तो सबसे बड़ी फातिमा की हैसियत क्या है कि जो बीबी के शिया हैं और बीबी के औलाद, बीबी खुद, बीबी के शौहर, तो अल्लाह ने इन सबको जहन्नम से बरी कर दिया है, इसलिए इनका नाम फातिमा रखा। फिर रसूल ने कहा अल्लाह ने अपने नामों से मुश्ताक होकर रखा है, कैसे? वो पूरी हदीसी पढ़ोगी इसलिए जुदा ना करो। अल्लाह ने कहा है ना, मैं फातिर समावात वल अर्ज़ हूँ, तो ये फातिमा है, खुद फातिर है, तो अपने नाम से मुश्ताक करके शहजादी का नाम रखा। फातिर क्या? फातिर समावात वल अर्ज़, यानी ऐसी जमीन और आसमान को अल्लाह ने खालिक किया, ना इससे पहले कभी जमीन और आसमान थे, ना कोई सोच सकता था, और आज से जो अल्लाह ने सातों आसमान और जमीन तहफ़्फ़ुज़ करा था खालिक किए, आज तक कोई दूसरा बना नहीं सकता। तो ऐसी मुनफरिद चीज को बनाना जो नामुमकिन हो, बस खुदा ने बनाई। तो कहा फातिमा के नाम फातिमा रखा अल्लाह ने नाम से, तो फातिमा वो है कि जिनके वसीले से खुदा नामुमकिन हाजत को पूरा कर देता है। और वाकई ऐसा है, आप सब अपनी जिंदगी में इस बात की गवाही देंगे, बहुत दफा बहुत चीजें हमें लगता नामुमकिन है, मगर मेरा अपना भी तजुर्बा, जनाब सैयदा का वास्ता देकर मांगिए और उस तरह मांगिए जो खुदा ने कहा है सूरह नाम में कि अपने रब को पुकारो तज़र्रुअन व खुफिया, उद्दू रब्बको तज़र्रुअन व खुफिया, गिड़गिड़ा के पुकारो और चुपकी चुपकी पुकारो। दुआ का तरीका सिखाया, अगर कोई ऐसे धोती भी आंखों से जनाब सैयदा का वास्ता देकर खुदा से मांगे तो खुदा नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। अच्छा कैसे कर देता है? एक रिवायत बयान करूँ, किताब है बरकात इस्तगासा जनाब सैयदा, उस किताब से बयान पढ़ लो। आज भी सऊदी अरब ने किसी शिया को गिरफ्तार कर लिया जाए तो बाप समझ लेते हैं कि बस अब जिंदगी हुई तो पलट के आएगा, वरना तो नहीं हो सकता। हमने देखा शेख नीमत की शहादत हुई, अब उनके बेटे को गिरफ्तार किया हुआ, तो नामुमकिन है कि उस हुकूमत के कंधों से, उसके हाथों से कोई निकल सके। उस किताब में रिवायत है एक जवान लड़का बाप का इंतकाल हो चुका था, अपनी माँ की एक ही औलाद था, उसको सऊदी गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया और 10 साल की सजा दे दी। अब माँ कोई सहारा नहीं, फकत एक बेटा, वो भी जेल में, गिरिया करती है, रोती है, हमारे लाखों बेगुना वो जुड़ने क्या था, बेगुना उसको, क्योंकि वो शिया है, शिया हकायक पे कायम है, तो उसको दाम लगा कर जेल में डाल दिया। माँ रो रही है, तड़प रही है, एक रात ख्वाब में देखा कोई आवाज आती है, कहता है तुम जनाब सैयदा से सहासा क्यों नहीं करती हो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल हल कर देगा। ये माँ उठी, उठ के अपने इलाके के शिया आलम के पास गई, कहा मैंने ऐसा ख्वाब देखा, तू मुझे कह रहा है जनाब सैयदा का सहासा क्यों नहीं करती हो? तो आलम कहते हैं हाँ जनाब सैयदा का सहासा ठीक है, अल्लाह की मुश्किल को हल करेगा। अब ये सुनकर रही था, पहले मैं अपने बेटे से जाके जेल में मिल के तो आऊँ, अब जो घर से नीली लाके बेटे की शक्ल देख लूँ, कितने दिन से मैंने अपने बेटे का चेहरा नहीं देखा। जब जेल पहुंची तो जेल के हुक्काम ने कहा आज तुम्हारी बेटे से मुलाकात नहीं हो सकती। था क्यों? कहा इसलिए कि हम तुम्हारे बेटे को अदालत लेके जा रहे हैं और आज मुलाकात नहीं हो सकती। आप ये परेशान, जब मेरे बेटे को सजा हो चुकी, और वो सजा काट रहा है तो ये दोबारा अदालत क्यों ले जा रहे हैं? अब तो फैसला कर दिया उन्होंने, अब वो और परेशान है और वो ये डरोती है, यहाँ तक कि जब गलती है जेल से तो सिलंदुल बाकी के करीब से गुजरती है और दिल माँ का भरा हो और कोई सुनने वाला ना हो जनाब सईदा का तवज्जो बेख्तियार जन्नत उल बकी में जाते हैं। आपको पता है वहाँ पे वो शुरबे मौजूद होते हैं और वो किस कदर बिदर बिदर कह के मारते हैं या डालते हैं, वो उसको मार रहे हैं, वो चिल्ला के बोल या भी जनाब सईदा या मौला की या फातिमा तो अलैहिस्सलाम या जहां मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे को दोबारा ले गए हैं अल्लाह, पता नहीं मेरी बेटी का क्या हाल होगा, गिड़ गिड़ा के वो मार रहे हैं मगर वो रो रही है, बीबी सईदा की कब्र पे रो रही है और रो के अपनी हाजत बीबी सईदा के सामने पेश करके घर आए। अब जब घर आए ना, घर का दरवाजा खोला तो देखा उसके बिस्तर पे उसका बेटा सो रहा है।
जुता हेरा को आपको ताहिर कर दिया तजहीरा
पाक करने का हक है. तो ज़हरा वो है जिनके लिए खुदा ने दो मर्तबा कहा, युता हिरा को तकीरा, दो ज़हरा दिया बेटा. ज़हरा की
आसमान
पर आसमान से मलाइका नाज़िल होते हैं और ज़हरा का घर वो है जहाँ मलाइका झूला झूलाते चटनी चलाते और जहाँ मलाइका दावा जन्नत कपड़े सिले हुए लेके सहरा के पास आता है उनके बच्चों के लिए। आसमान वो है जहाँ अंबिया रहते हैं और सहरा वो है जिनकी आगोश में वारिसे अंबिया परवरिश पाता है। अगर हम आसमान की तरफ निगाह करें, देखिए लोग कहते हैं आसमान चमकता है तारे चमकते हैं, तो अल्लाह ने आसमान में चांद को भी रखा है, चांद सूरज भी चमक रहा है। अब आसमान पे अगर चांद चमकता है तो ज़हरा इतनी चमकदार और इतनी नूरानी है। किताब बरकात सय्यदा से रिवायत नकल कर रही हूँ कि उम्मुल मोमिनीन कहती है कभी हमारे हाथ से अगर सुई गिर जाए, अब उसके बाद ढूंढे मिल नहीं रही क्या करें, बहुत तलाश कर लिया, तो हम ज़हरा के आने का इंतजार करते थे कि जब ज़हरा हमारे घर में आएंगी। ज़हरा का चेहरा इतना नूरानी है, वजूद इतना नूरानी है, उस नूर की चमक से जिस सुई को हम ढूंढ नहीं रहे होते थे वो ज़हरा के आने की वजह से वो सुई हमें मिल जाती है। सलाम के बाद जब भी हम दुआ मांगते हैं तो आसमान तक हाथों को बुलंद करके मांगते हैं, मगर ज़हरा वो है जिनका वसीला दुआओं को कबूल करवा देता है। और कैसे वसीला कबूल करवा देता है, रिवायतों पर तारीफ की रिवायत तारीफ की चौथी जिल्द में रिवायत मौजूद है, उसमें बयान किया जाता है कि एक मरतबा वो हज पे जा रहे मालिक मेरे इलाज भी उसी काफिले में था। जब हज पे निकल रहा था काफिला तो साथ में एक खातून भी शामिल हो गई, मगर उन खातून के साथ जो ऊन था बहुत कमजोर बहुत लावर था। अब लोग कहते हैं या तो आप अगर हज पे जाना चाहती हैं तो एक ताज़ा ऊन खरीद लीजिए, वरना ये लावर ऊन आपको मक्के तक नहीं पहुंचाएगा, या अगर आप नहीं आपके पास हो रहे तो आप शहर में रह जाइए, हम लोग को जाने देंगे। मगर वो खातून नहीं माना, क्या नहीं मुझे खुदा के घर की ज्यारत करनी हज पे जाना है। अब जब वो खातून चली पूरा हज का काफिला चला, रास्ते में एक मकाम पे चलते चलते वो जो लावर होता उस खातून का रुक गया, अब आगे नहीं बढ़ रहा, ताकत ही नहीं है उसे। मालिक जिना कहते मैं उधर के आया अपने ऊंट से और जरा हमको तंबीह करने के डांटने के अंदाज में कहा था ना हमने आपसे कि आपका ये ऊंट पूरा सफर तय नहीं कर सकता और आप नहीं मानी, अब क्या करेंगे आप, आगे नहीं बढ़ रहा। सब कुछ सुन के अब हमारे लिए बुरा व्यवहार, हम लोग पहले को जवाब देना अपना वाजिब था समझते, कभी कभी जवाब न देना बहुत बड़ी एक अल्लाह की हिम्मतों से मनुष्य क्या किया, उसे आसमान की तरफ निगाह की, बारिश तुमने अपने घर तक पहुंचने नहीं दिया मुझे, अगर कोई और मेरे साथ करता तो मैं तुझसे शिकायत करती, अब तुमने किया है तो तेरी शिकायत किससे करो। अभी इतना ही जुमला कहा था कि दूर से ऊंट दौड़ाता हुआ एक शख्स आया और कहा बीबी आप इस ऊंट पर बैठ जाइए, जैसे ही वो खातून ताज़ा तवाना ऊन पर बैठी का वो ऊन इतनी बिजली की रफ्तार से चला कि काफिले वाले कहते हैं हमें कहीं का ऊन नजर नहीं आया, हम जिस मंजिल पर भी रुकते थे और देखते थे वो खातून वहां पे नहीं होती थी, हमने कब देखा जब हम मक्के पहुंच गए तवाफ करने लगे तो हमें वो खातून तवाफ करती नजर आई। हम एक बार मालिक से मिला कहते हैं मैं करीब गया, मैंने कहा बीबी अपना तारुफ करा तुम हो कौन, कहा मेरा नाम मस्का है शोहरा, मेरा नाम शोहरा है, मेरी माँ का नाम मस्कर था और उनकी माँ का नाम फिज़ा था, जो जनाब ज़हरा की कनीज खास थी, मैं उनकी फिज़ा की नवासी हूँ। जब तुमने मुझे कहा ना ताना दिया चूचे के आप भजन, अब आपका वो कैसा हो गया, मैंने खुदा की बारगाह में अपनी नानी फिज़ा की खिदमतों का वास्ता दिया, अगर वो ज़हरा की कनीज थी तो खुदाया अगर तुम उनकी खिदमतें मुझे कबूल है बीबी फिज़ा की तो मुझे जनाब सईदा का बहिश से एक फरिश्ते के साथ बहिश की सवारी भेजी, मैं बहिश के ऊंट पे सवार हुई और मुझे यहाँ पहुंचा के चला गया। तो ज़हरा का वसीला वो है कि दुआओं जो नामोंगी दुआएं वो दुआएं कबूल हो जाती हैं अल्लाह की बात का। सलाम भेजिए बाबा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जैसे زمین سے زہار کو نسبت دے. کیوں؟ اللہ نے زہار کے منہ سے زمین و آسمان طلب کیے. آسمان سے بھی زہرا کے منہ سے چمکرائی آسمان آئے آسمان زہرا کے منہ کی وجہ سے. تو آسمان سے بھی نسبتیں ہیں زہرا کو. اور کیسی نسبتیں ہیں؟ آسمان زمین کو جگہ ہے جہاں سے اناج اگتا ہے. اور اللہ کہتا ہے اناج کھاؤ اور کھا کے میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں. ہمیں حکم ہے اناج کھاؤ, کچھ بھی کھاؤ, اللہ کا شکر کرو. اور زہرا وہ ہے کہ جب زہرا کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں لینے کے لیے آج سے ملائکہ آ جائے اور بی بی تین دن پر روٹیاں دے تو خدا کہتا ہے ان نہازا کانا لکم جزا وسانکم مشکورا. تم نے یہ کام فقط تیرے لیے انجام دیا ہے, اللہ تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے. اور ہمیں حکم ہے کھا کے شکر کرو. اور زہرا بولے جن کا شکریہ اللہ ادا کر رہا ہے. پھر ہم زمین کو دیتے ہیں. زمین متحرات میں سے چیزوں کو پاک کر دیتی ہے. ہم جو قدم اٹھاتے ہیں نا, اگر ہمارے دربے میں کوئی جوتے کے دربے میں کوئی نجاست بھی لگی ہو تو زمین سے ٹچ ہوتے ہوئے وہ صدا پاک ہو جاتی ہے. متحرات میں سے زمین. اور زہرا وہ ہے جو ہمارے وجود کو پاک کر دیتی ہے. کیسے؟ رسول خاتم مرتبہ احمد مصطفیٰ گناہوں کو بخش دے گا اور وہ درود بھیجنے والا میرے ساتھ محشر میں شروع ہوگا. جناب رسول خدا کے ساتھ محشر ہونا اور جو جناب زہرا کو سلوار بھیجے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. بابا دوسرا سلوار جیسے کوئی آج تک سائنس کی اتنی طرف نہیں ہوتی ہے مگر آج تک زمین کے تحت سرا تک کیا کیا خزانے اللہ نے گشودہ رکھے ہیں. کوئی سائنٹسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے زمین کو مکمل جان لیا. کوئی دعویٰ آج تک نہیں کر سکتا. ایسے ہی زہرا کے لیے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے زہرا کو مکمل پہچان لیا. جس کے لیے خدا سورہ فجر میں کہتا ہو تم کیا جانو جناب سیدہ کیا ہے. تو کوئی جناب سیدہ کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر سکا. تو جیسے آسمان سے نسبتیں ہیں ایسے زمین سے زہرا کو نسبت ہے. اور ان نسبتوں کے بعد میں بی بی کے ایک حدیث کا تذکرہ کر دوں اور میں اس کو روانہ کر دوں. شہزادی کی جو حدیث میں بھی آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں مجھے یقین ہے یہاں اتنے مدارس ہیں اتنی مجالس ہوتی ہیں آپ سب کو وہ حدیث زبانی یاد ہوگی. مگر میں چند لمحے ہم رات اس فرش اعضا پہ غور کریں گے اور مسائل سے متصل ہو جائیں گے. وہ حدیث کیا ہے؟ کتاب احادیث فاطمہ ہر کتاب جناب سیدہ سے متعلق ہو سنی حدیث موجود ہے. ایک مرتبہ خاتون جنت بی بی فاطمہ تو زہرا چلاتے ہیں. اور جن باتوں سے بی بی نے روکا ہے शिया नहीं, क्या हम अली की शिया नहीं कहलाएंगे? बताएं मैं आप लोग में जैसे ही सवाल उसके जहन में आया उसकी बीवी वापस गई जनाब सैयदा के पास, कहा जनाब सैयदा मेरा शौहर रो रहा है और वो कह रहा हम तो आपके शिया हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमसे खताएं होती हैं, गुनाह होते हैं, हम हर उस बात पे अमल नहीं कर पाते जो आपने कहा है और हर उस बात से रुक नहीं पाते जिसे आप लोगों ने कहा है। तो शहजादी कहती है तुम्हारा शौहर तेरी हदीस नहीं समझा, तेरी बात नहीं समझा, अगर वो इन चारों बातों पर अमल करे तो हमारा हकीकी शिया होगा, बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा, और अगर वो इन चारों बातों पर अमल नहीं करता जैसा कि वो खुद रो रहा है तो हमारा मुहिब है, और हमारा मुहिब भी जन्नत में जाएगा मगर जब जाएगा जब वो जमाने की तकलीफ़ों को सह लेगा, उसके बदले उसके गुनाह बख्शे जाएंगे, फिर वो क़यामत की सख्तियाँ झेलेगा, फिर वो जहन्नुम के पहले दर्जे के अजाब को झेलेगा जिसके जितने गुनाह होंगे, जब गुनाहों से पाक हो जाएगा तो हमारी मोहब्बत के सबब हम शिफात करवाएंगे और उसे जहन्नुम से निकलवा देंगे, बहिश्त में ले जाएंगे। अब जाके उसकी बीवी ने जवाब अपने शौहर को सुनाया, हमें और आपको सोचने का मौका दिया, हम और आप भी, मैं अपने बारे में कहूँ आप मुझसे बेहतर हैं, मैं अपने बारे में कहूँ हम सब मुहिब की मंजिल पर हैं, मैं अपने आप को कहूँ मुहिब हूँ, हम कब शियत की मंजिल पे आएंगे कि हम सीना ठोक के कह सकें कि जिस जिस बात का बीवी ने हुक्म दिया है हम अमल करते हैं और जिस जिस बात का बीवी ने मना कर दिया है हम नहीं करते। हम नहीं कह सकते, हमसे गीबतें भी हो जाती हैं, हम गुस्से में भी आ जाते हैं, गीबत गुनाह कबीरा, गुस्सा गुनाह कबीरा, किसी की बात बुरी लगी न जाने क्या क्या सुना दिया, नमाज अव्वल वक्त है, कभी नमाजें शादियों की महफिल में गए गीबतें शुरू हुई, नमाज भी कज़ा हो गई, हम बीवी की बातों पे पूरा अमल नहीं करते। अब चाहे अमल करने की बात हो चाहे ना करने की बात हो, शहजादी ने जिन जिन बातों से रोका है हम करते हैं। अच्छा क्या करें, किसी खातून के जहन में सवाल पैदा होगा, भाई हम फरिश्ते थोड़ी हैं, हम इंसान हैं, हमसे खताएं होती हैं तो हमसे गुनाह भी होता है, हम नहीं कर सकते ये, हम मुहिब भी रहते हैं, मुहिब को भी तो बीवी बख्शवा देंगी। तो मैं उस खातून से ये कहूँगी बेशक हदीस किस्सा में भी हम पढ़ते हैं मौला ने अपने मुहिब और शियों दोनों को चाहा है, दोनों से कहा है जन्नत पहुँचाएंगे, मगर बीबी ने जो अपने जवाब में कहा है कि मुहिब जन्नत पहुँचेगा कुछ अरसे बाद, कितने अरसे बाद, रिवायतें मिलती हैं कुछ लोग इतने गुनाहगार होंगे, शिया हैं गुनाहगार होंगे कि 70 लाख साल जहन्नुम में अजाब भुगत के फिर शिफात मिलेगी। तो मेरे और आपके जिस्मों में इतनी ताकत है कि हम ये अजाब सह सकें कि दुनिया की मुसीबतों से हम रोन पड़ते हैं, बीबी आप नहीं सुन रही है, बीबी कौन सुनेगा, हम लड़ के मांगते हैं आले मोहम्मद से, हालांकि तरीका क्या है, गिड़गिड़ा के मांगो झुक के मांगो, तुम्हें जो कुछ आले मोहम्मद ने दिया तुम हक में ही रखते थे मगर हम और आप तो लड़ के मांगते हैं। तो आप सोचिए क्या हमारे जिस्मों में इतनी ताकत है कि हम जमाने के मसाइल भी उठाएं, हम कब्र का फिसाद भी सहें, हम क़यामत की सख्तियां भी देखें और फिर हम जहन्नम का अज़ाब भी सहें, क्या हमारे जिस्मों में इतनी ताकत है? हम में से हर एक कहेगा नहीं है। तो जब नहीं है तो हम क्या करें कि मुहिब से शिया की मंजिल पे आ जाए, हम सब चाहते हैं। और देखिए मुश्किल नहीं है, हुर ने बता दिया कर्बला में कि एक रात चाहिए थी उसको मुहिब से शिया बनने के लिए, मुहिब था मेरा उससे इरादा, मुहिब से शिया बन गया एक रात में। तो ये हमारे इरादों पर है, हम कब इरादा करेंगे कि हमें सारा के शिया बनना है। अच्छा सारा के शिया बनना चाहते हैं, तीन काम करें मुख्तसर, अगर हम तीन कामों में साबित कदम हो गए हम यकीनन फातिमा ज़हरा के शिया कहलाएंगे, इन तीन बातों को बयान करूंगी और मसाइल से मुतसिल होगा। और ये तीनों बातें आप जानते हैं, तीनों बातें आप जानते हैं, बस फर्शी अज़ा में ज़रा सा हमें हिम्मत पकड़ें, ज्यादा बातों में बैठे मलाइका बैठे दिल में सुहा करें मौला हमारी मदद करें, हम ज़हरा के शिया बनना चाहते हैं, हमारी मदद करें, हमारा इरादा न टूटे, हम इरादा करते ही बने। क्या पहली चीज तज़किए नफ्स करना, अपने नफ्स को गुनाहों से पाक करना होगा। अच्छा कैसे पाक करना होगा, कुरान पाक में सूरह बकरा और सूरह बकरा की आयत नंबर 282 उसे रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहे हैं वत्तकुल्लाहा वयुअल्लिमुकुम अल्लाह। अच्छा ये वत्तकुल्लाह का तर्जुमा कुरान में जगह जगह क्या होता है, जो अल्लाह से डरेगा, जो अल्लाह से डरेगा मतलब क्या, कभी गॉड अल्लाह के हवा मोहना दीजिए, प्रभु से डरे नहीं। अल्लाह से डरने का मतलब ये जो अपने गुनाह से डरेगा, मेरा रब मुझसे नाराज ना हो जाए जिसने बिन मांगे मुझे इतनी नेमतें अदा कर दी, अगर वो मुझसे नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा। तो वत्तकुल्लाह का मतलब क्या है, जो गुनाहों से बचेगा, गुनाहों से डरेगा, गुनाह नहीं करेगा। वो युअल्लिमुकुमुल्लाह, अल्लाह का वादा है कुरान में, तुम गुनाह से बचो अल्लाह तुमको पढ़ाएगा। अच्छा अल्लाह कैसे पढ़ाएगा, अल्लाह तो हमें नजर नहीं आता, हम कभी आए तो कोई गौर नहीं करते ना। देखिए यहाँ पे आप लोग इतने सारे ग्रुप्स बने, उस पे फिका के दर्स भी हो रहे हैं, उस पे अखलाकियात के दर्स भी हो रहे हैं, एक दर्स का और जवाब करेंगे क्या? हफ्ते भले एक दर्स की इब्तिदा कीजिए, कम अज कम पांच आयतों के, हम पचहत्तर के मानने वाले, पांच हो जाए कम अज कम पांच आयतों की तर्जुमा और तफसीर, वो तफसीर जो आले मोहम्मद ने बयान की, पूरी बच्ची पूरी खातून जिसे तफसीर हो पड़ी है, अब तो उर्दू में ट्रांसलेट हो गई है, तफसीर नुरुस समय बेहतरीन, तफसीर फहमुल कुरान डॉक्टर मोहम्मद हसन नजीर, तफसीर नमूना, तफसीर अलमारुन नजा, तफसीर नूर मोहसिन कराची, जो भी आप आसानी से पढ़ सके। और आप शुरू कीजिए पांच आयतों को एक हफ्ते में, तो पंद्रह दिन पांच आयतों का दर्स लेंगे, यकीनन हम वो पांच आयतें समझ लें। जब हम कुरान समझने लगेंगे ना, हमारी जिंदगी में चेंज आ जाएगा। तो अल्लाह ने कुरान में क्या कहा, वत्तकुल्लाह वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, जो अल्लाह से डरेगा, गुनाह से बचेगा, उसे अल्लाह खुद पढ़ाएगा। कैसे पढ़ाएगा, मासूमीन से पूछिए अल्लाह को कैसे पढ़ाएगा। छठे माँ सबके आले मोहम्मद इमाम जमाल
जगह में।
शैना अपने जिंदगी भर के लिए एक नसीहत कर गया कि गिबत नहीं करनी चाहिए। पहली चीज बात मुकम्मल हो रहा है, हमें तज़किया नफ्स करना है। अच्छा, हम तज़किया नफ्स करते हैं और कभी कभी क्या कहते हैं, हम तो चाहते हैं मगर ये शैतान हमें नहीं करने देता। हम तो चाहते हैं सर्दियों में कि रात को वजू करके सोए मगर पानी इतना ठंडा होता है, हालांकि गर्म पानी भी आ रहा है किसी घर में नहीं गर्म पानी, लेकिन अगर पानी इतना ठंडा ठंडा होता है कौन वजू करे। ये शैतान हमें गुमराह कर देता है। रसूल ने मासूमीन ने शैतान को हमसे डरा दिया है। कैसे? रसूल का पति मर्तबा अहमद ने शैतान तुमसे डर रहे तो तुम्हें चाहिए कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ो। जो अव्वल वक्त नमाज पढ़ता है शैतान उससे डर रहता है। और मौलाना मुश्किल कुशा क्या कहते हैं, तुम्हारा हर अमल तुम्हारी नमाज के ताबे है। जिंदगी में बेहतरी चाहते हो, अपनी नमाज को अच्छा कर लो। नमाज तुम जितनी बेहतरीन करते जाओगे तुम्हारी जिंदगी बेहतरीन होती जाएगी। तुम्हारा हर अमल तुम्हारी नमाज की ताबे। तो अगर हम अव्वल वक्त नमाज कुरान से कलाम करने लगी। फिजा बचपन से कुरान नहीं जानती थी, जब जहरा के घर में आई तो कुरान पता चला क्या है, और जहरा से कुरान ऐसे सीख लिया कि कुरान से कलाम कर रही। मेरा दिल चाहता है बीबी, ये दुनिया कुरान को बहुत इज्जत देती है, कुरान को एक गिलास में लपेट के ऊंची जगह पे रखते हैं, मगर दुनिया ने कुरान को इज्जत देना तो सीख लिया, वारिस कुरान को इज्जत। इधर मुस्लिम की शहादत हुई, दुनिया का तरीका है दुश्मन भी मौत में ताजियत करने आ जाते हैं, मौत है जो ताजियत कर ले फुर्सा दे ले, मगर जब जहरा यकीन हुई, तीन दिन तक जहरा के घर में कोई नहीं आया, रसूल की एक ही बेटी है और वो खातून जन्नत है, लोग आते जहरा को फुर्सा देते, कोई ना आया, और तीसरे दिन दरवाजे पे आग लगाने आते, और आप इन 40 महीने के दौरान इस्लाम की पहली दहशत गर्दी है, एक ज़ारा, एक बीवी जिसकी उम्र 18 साल है, जिसका शौहर फतेह इस्लाम है, मुश्किल कुशा है, जिसके बेटे इमाम है, जिसके घर में वही नाजिल होती थी, उसके घर का दरवाजा चला है आग है ज़ारा, दरवाजे पे लकड़ी आ रही थी, आग लगा दी छोटे बच्चे भी है, सोचती हूँ जिसका दरवाजा जल रहा था सारा भी छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन जहरुल कुलसूम किस तरह हौसला कर रहे होंगे, और इन्होंने हसन ने इजाजी को कहा है मैं वो दिन नहीं भूल सकता जब दरवाजा चलता गिराया गया, मेरी माँ पे गिरा, मैं बहुत छोटा था, अपनी माँ को बचा नहीं सकता था, अगर उस चलते हुए दरवाजे ठोकर मारी गई और जो दरवाजा गिरा जनाब सैयदा بنی ہاشم کی عورتیں کہتی ہیں جناب سیدہ اس طرح